संसद की वास्तविक भूमिका एक्चुअल रोल ऑफ द पार्लियामेंट ऊपर संसद की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है जिनको पढ़ने के बाद प्रतीत होता है कि राज्य प्रबंध का लगभग प्रत्येक क्षेत्र संसद के नियंत्रणाधीन है तथा संसद की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता जबकि वास्तव में संसद की ये शक्तियां केवल औपचारिक तथा कानूनी फॉर्मल एंड लीगल है। वास्तविकता तो यह है कि संसद के समक्ष जो भी बिल मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं वह उन पर औपचारिक विचार करने के बाद उन्हें पास कर देती है। मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार नीतियों तथा बजट पर अपनी स्वीकृति देती है इत्यादि। नीचे हम संसद द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निभाई गई भूमिका का वर्णन करते हैं। एक, संसद तथा महिला कल्याण, पार्लियामेंट एंड वुमेन वेलफेयर। यद्यपि भारतीय संसद में स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक महिला सदस्यों की संख्या काफी कम रही है परंतु इसके बावजूद भी स्त्रियों के कल्याण के लिए संसद द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्त्रियों को पुरुषों के समान स्तर प्रदान करने तथा उनके हितों का विशेष तौर पर ख्याल रखने के लिए अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। संसद ने कुछ लोगों के कट्टर विरोध की परवाह न करते हुए हिंदू विवाह कानून, हिंदू मैरिज एक्ट तथा हिंदू उत्तराधिकारी कानून, हिंदू सक्सेशन एक्ट पास किए जिनका उद्देश्य स्त्री को पिता की संपत्ति में पुत्रों के समान भागीदार बनाना था। इसके अतिरिक्त स्त्रियों के शोषण को रोकने के लिए संसद ने दहेज विरोधी कानून तथा सती विरोधी कानून पास किए हैं। पेज 211। स्त्रियों के लिए प्रसूति सुविधाओं की तथा समान काम के लिए पुरुषों के समान मजदूरियों की व्यवस्था की है। संसद की महिला सदस्यों ने संसद में स्त्रियों से संबंधित मामलों में विशेष रुचि दिखाई है तथा सरकार का ध्यान भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम कर रही स्त्रियों की बुरी अवस्था की ओर आकर्षित किया है जिसके परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा स्त्री सुधार के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। संसद द्वारा बलात्कार के आरोपियों को कठोर दंड दिए जाने की व्यवस्था भी की गई है। दो, संसद तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की भलाई, पार्लियामेंट एंड द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसीज। संसद ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की रक्षा में भी विशेष रुचि दिखाई है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण से संबंधित कमेटी संसद की स्थायी कमेटी बन गई है। यह कमेटी पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए आज तक सरकार को 50 से अधिक प्रस्ताव दे चुकी है जिनके द्वारा मुख्यतः पिछड़ी श्रेणियों के लिए सरकारी सेवाओं में स्थान सुरक्षित रखने, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधाएं, शिक्षा प्राप्ति के लिए विशेष सुविधाएं, मकान बनाने की सुविधाएं आदि प्रदान किए जाने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अनेक कानून भी पास किए गए हैं। 1976 में पास किए गए नागरिक अधिकार सुरक्षा कानून, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के अधीन छूतछात को अपराध घोषित किया गया है तथा इसे व्यवहार में लाने वालों को कठोर सजाए दिए जाने की व्यवस्था की गई है। 65वीं संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन को कानूनी स्तर प्रदान किया गया है। संसद द्वारा 93वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के साथ संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं में स्थान सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था की गई है जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10 अप्रैल 2008 को दिए गए ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार संवैधानिक माना गया है परंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मलाईदार परत, क्रीमी लेयर अर्थात पिछड़े वर्गों के समृद्ध वर्ग जिसकी कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये अब 6 लाख रूपये या इससे अधिक है को आरक्षण के लाभ से बाहर रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय का मत है कि मलाईदार परत में क्रीमी लेयर में शामिल लोग आर्थिक रूप में विकसित और शिक्षण क्षेत्र में काफी आगे हैं, इस कारण इन्हें यह लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए। तीन, संसद तथा मजदूर कल्याण, पार्लियामेंट एंड वर्कर्स वेलफेयर। यद्यपि संसद में सदैव ही मजदूरों के प्रतिनिधियों की संख्या काफी कम रही है परंतु फिर भी संसद द्वारा मजदूर कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। फैक्ट्री नियमों के अधीन मजदूरों के काम करने के घंटे, मजदूरियां, स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमा सुविधाएं आदि निश्चित की गई हैं। इसके अतिरिक्त बीमारी, अपंग हो जाने, काम के दौरान चोट लग जाने या मौत हो जाने की स्थिति में मजदूरों को सुविधाएं दिए जाने की व्यवस्था की गई है। महिला मजदूरों के लिए प्रसूति सुविधाओं की व्यवस्था भी है। कानून द्वारा बंधुआ मजदूरी तथा बेगार आदि की समाप्ति की गई है। श्रमिकों को कारखानों के प्रबंध में भागीदार बनाने के उद्देश्य को मुख्य रखकर संसद में एक बिल पेश किया गया है। अगस्त 2005 में संसद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 पास किया गया था, जिसका उद्देश्य गांवों में रहने वाले बेरोजगार लोगों को वर्ष में 100 दिन के लिए रोजगार प्रदान करना है। 4. भूमि सुधार कानूनों का पास किया जाना, पासिंग ऑफ लैंड रिफॉर्म एक्ट्स। भारत में से जमींदारी प्रथा की समाप्ति के लिए संसद द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। 1951 में संसद द्वारा संविधान में पहला संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, किया गया, जिसके अधीन संविधान में 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल शामिल की गई। समय समय पर बहुत सारे भूमि सुधार कानून, लैंड रिफॉर्म एक्ट, संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं, जिनकी आज तक की कुल संख्या 284 है। संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कानून न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू से मुक्त हो जाते हैं। 19 अगस्त 2013 को संसद द्वारा भूमि अधिकरण बिल, लैंड एक्विजिशन बिल पास किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों की भूमि की खरीद के बदले में उन्हें उचित मूल्य दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। 5. संवैधानिक संशोधन तथा सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस। संवैधानिक संशोधनों द्वारा संसद ने भारत की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन लाने का यत्न भी किया है। पेज 212। संविधान में किए गए पहले 1951 तथा चौथे 1955 संशोधन का उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों तथा राष्ट्रीयकरण किए गए उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना था। इन संशोधनों ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने तथा बीमार उद्योगों, सिख इंडस्ट्री पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने में सहायता की। 1971 में किए गए 24वें तथा 25वें संशोधन, 24th एंड 25th अमेंडमेंट 1971 का उद्देश्य निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। 1979 में किए गए 44वें संशोधन द्वारा संसद ने संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार, लीगल राइट बनाकर सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन के रास्ते में आने वाली रुकावटों को स्थायी तौर पर समाप्त कर दिया है। इसी तरह दिसंबर 2002 में संविधान में किए गए 86वें संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन की गति और भी तेज की गई है। इसके अतिरिक्त अगस्त 2005 में संसद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट NREGA पास किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगार लोगों को वर्ष में 100 दिन के लिए रोजगार प्रदान करना है, और अप्रैल 2008 से यह अधिनियम सारे भारत में लागू किया गया है। संसद द्वारा वृद्ध माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और उनके कल्याण के लिए अधिनियम पास किया गया है, और जो बच्चे अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल नहीं करते उन्हें 3 महीने की सजा दिए जाने की व्यवस्था की गई है। 6. जांच पड़ताल का कार्य, फंक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। संसद राज्य प्रबंध के क्षेत्रों में पाई जाने वाली त्रुटियों को उभारने के लिए निरीक्षक कमेटियां, इन्वेस्टिगेशन कमेटीज भी स्थापित करती है। नई दिल्ली के वेलिंगटन अस्पताल में डॉक्टर लोहिया की मौत हो जाने के बाद अस्पताल के कामकाज की जांच करने के लिए संसद द्वारा कमेटी स्थापित की गई। लाइसेंस प्रणाली की जांच के लिए औद्योगिक लाइसेंस कमेटी स्थापित की गई। स्वीडन से खरीदी गई बोफोर्स तोपों की खरीद के संबंध में पैदा हुए विवाद की छानबीन के लिए संसदीय कमेटी का गठन किया गया। संसद की वित्तीय कमेटियां जैसे कि सार्वजनिक लेखा कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, अनुमान कमेटी, एस्टीमेट कमेटी तथा सरकारी कारोबार से संबंधित कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, सरकार के वित्तीय प्रबंध के भिन्न भिन्न पक्षों की जांच पड़ताल करती है तथा सरकार का ध्यान उसकी कमजोरियों की ओर खींचती है। 1992 में बैंकों में हुए वित्तीय घोटाले की जांच करने के लिए श्री राम निवास मिर्धा की अध्यक्षता में दोनों सदनों की संयुक्त जांच समिति जेपीसी का गठन किया गया। इसके बाद 2011 में 2G स्पेक्ट्रम के वितरण से संबंधित घोटाले 2G स्पेक्ट्रम स्कैम का निरीक्षण करने के लिए श्री पी सीचाको की अध्यक्षता में 30 सदस्यीय दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी का गठन किया गया था। 7, लोगों की शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना, कॉलिंग अटेंशन टू वर्ड्स द ग्रीवियंसेज ऑफ द पीपल। संसद के सदस्य प्रश्न पूछकर लोगों की शिकायतों को सरकार के सामने लाते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर कहलाता है, जिसमें संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं तथा उसके उत्तर प्राप्त करते हैं। भारतीय संसद की कार्यप्रणाली में जीरो आवर का भी विशेष महत्व है। लोकसभा में प्रश्न समय क्वेश्चन आवर समाप्त होने तथा लोकसभा की नियमित कार्यवाही आरंभ होने के बीच के समय को जीरो आवर कहा जाता है तथा इस समय में संसद के सदस्य कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं। प्रश्नकाल में केवल वही प्रश्न ही उठाए जा सकते हैं जिनकी लिखित सूचना पहले ही सदन के सभापति को दी हुई होती है तथा उसने प्रश्न पूछने की आज्ञा दे दी होती है। इसके विपरीत जीरो आर में वे विषय भी उठाए जाते हैं जिनका उस दिन की कार्यवाही के साथ कोई संबंध नहीं होता। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार, हिंसक घटनाओं, प्रदर्शनों, घेराव आदि की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थगन प्रस्ताव एडजॉर्नमेंट मोशन भी पेश किए जाते हैं। इन सभी व्यवस्थाओं का उद्देश्य सरकार का ध्यान लोगों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना होता है तथा इस क्षेत्र में भिन्न भिन्न समयों पर संसद द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। पेज 213। 8, राजनीतिक शिक्षा की पाठशाला, स्कूल ऑफ इम्पार्टिंग पॉलिटिकल एजुकेशन। संसद एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक विचारशील संस्था है। रिपीट, संसद एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक विचारशील संस्था है। इसमें देश तथा विदेश की महान समस्याओं, राजनीतिक मामलों तथा शासन संबंधी नीतियों पर विचार विमर्श तथा वाद विवाद होते रहते हैं। निर्णय करने से पहले प्रत्येक विषय के अलग अलग पक्षों की पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाती है। इसके अतिरिक्त संसद में भिन्न भिन्न हितों, वर्गों, जातियों तथा संप्रदायों के प्रतिनिधि भी होते हैं जो अपने अपने दृष्टिकोण को मुख्य रखकर भिन्न भिन्न विषयों पर अपने विचार प्रकट करते हैं। समाचार पत्रों, रेडियो तथा टेलीविजन द्वारा संसद की कार्यवाही का प्रसारण किया जाता है, जिससे लोगों के ज्ञान में वृद्धि तथा उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हजारों लोग संसद की कार्यवाही देखने भी जाते हैं तथा वे दर्शक गैलरियों में बैठकर भिन्न भिन्न विषयों पर विचार विमर्श होते तथा बिल पास होते देखते हैं। इस सब के परिणाम स्वरूप लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। 9, कार्यपालिका पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार होने के कारण डॉ डी बासु के अनुसार संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। यद्यपि मंत्रिपरिषद को संसद में बहुमत का विश्वास प्राप्त होता है, परंतु फिर भी उन्हें अपने प्रत्येक कार्य के लिए संसद के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ता है। ऐसे कई अवसर आए हैं जब मंत्रियों को संसद के प्रभावाधीन अपने पद छोड़ने पड़े हैं। 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के बाद रक्षा मंत्री श्री वी के कृष्णा मेनन को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद श्री गुलजारी लाल नंदा को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि वह गाय हत्या विरोधी आंदोलन के दौरान दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल रहे। नवम्बर 1990 में श्री वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को लोकसभा में उसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर त्याग पत्र देना पड़ा था। इसी तरह लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर सकने के कारण 28 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिपरिषद को, 11 अप्रैल 1997 को देवेगौड़ा मंत्रिपरिषद को, 28 नवंबर 1977 को गुजराल मंत्रिपरिषद को और 17 अप्रैल 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी मंत्री परिषद को अपने अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। मार्च 1992 को विदेश मंत्री श्री माधव सिंह सोलंकी को संसद में हुई आलोचना के कारण अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। यह आवश्यक नहीं कि संसद के प्रभावाधीन प्रत्येक मंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है, परंतु वह संसद में हुई अपनी आलोचना को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। 10. राजनीतिक सुधार पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। संसद द्वारा राजनीतिक सुधार लाने के लिए भी अनेक कार्य किए गए हैं। 1950, 1951 तथा 1988 में पास किए गए जन प्रतिनिधित्व कानून पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950, 1951 एंड 1988 द्वारा चुनाव प्रणाली को दोष रहित बनाने के लिए अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। 1985 में संविधान में किए गए 52वें संशोधन और 2003 में किए गए 91वें संशोधन द्वारा राजनीतिक जीवन में से दल बदली की नामुराद बीमारी ईवल ऑफ डिफेक्शन को समाप्त किया गया। इसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन में से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। 15 जून 2005 को संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 पास करके नागरिकों को सरकारी अधिकारियों से भिन्न भिन्न विषयों के संबंध में सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य प्रबंध को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल है। देश में व्यापक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए संसद द्वारा दिसंबर 2013 में लोकपाल बिल पास किया गया था, जिसके अंतर्गत केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इसके बाद 21 फरवरी 2014 को संसद द्वारा विसल ब्लोअर बिल पास किया गया था, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करना है। 11. नेताओं की भर्ती तथा प्रशिक्षण संबंधी भूमिका रोल अबाउट द रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द लीडर्स। संसद को राजनीतिक नेताओं की नर्सरी भी माना जाता है। संसद का सदस्य बनने के लिए कोई विशेष योग्यता निश्चित नहीं की गई, इसलिए कई बार ऐसे सदस्य भी इसके सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं जिनको संसद की कार्यवाही तथा व्यावहारिक राजनीति का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। ऐसे सदस्यों के लिए संसद एक ट्रेनिंग स्कूल का कार्य करती है। सदस्य संसद की कार्यवाही तथा कानून निर्माण के भिन्न भिन्न पक्षों आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। पेज 214 तथा वे बहुत बढ़िया पार्लियामेंटेरियन बन पाते हैं। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न सदस्यों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर भी संसद में ही प्राप्त होता है तथा संसद में इनकी कार्यक्षमता के आधार पर उनको उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है। पहले उनको संसदीय समितियों तथा संसदीय डेलीगेशनों के सदस्य बनाया जाता है और फिर उनको मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार उनकी भिन्न भिन्न भूमिकाओं में भर्ती भी संसद में से ही की जाती है। आज तक के हमारे लगभग सभी महान नेता संसद के सदस्य रहे हैं। 12. विरोधों का हल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। प्रत्येक समाज में विरोधों का होना स्वाभाविक ही होता है। लोकतंत्रीय समाज में यह विरोध और भी स्पष्ट होते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न हितों को अपने हितों की अभिव्यक्ति के अनेक अवसर मिलते हैं। भारत भिन्नताओं वाला देश है, जिसमें जाति, धर्म, रंग, नस्ल, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर अनेकों विपक्ष पाए जाते हैं। संसद एक ऐसा मंच है जिसमें भिन्न भिन्न हितों के संबंध में अपने विचार प्रकट करने के अनेकों अवसर प्राप्त होते हैं तथा इस प्रकार उनको पूर्णतया मंथन किया जाता है। कई बार भिन्न भिन्न हितों के मध्य मतभेदों की समाप्ति के लिए संसदीय कमेटियों का गठन किया जाता है तथा राष्ट्रीय सहमति पर पहुंचने का प्रयत्न किया जाता है। संसद में प्रत्येक विषय पर गंभीर रूप में विचार विमर्श किया जाता है, क्योंकि यह सर्वोच्च राष्ट्रीय मंच होता है। इसमें प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है तथा विपक्षों को हल करने का इससे बढ़िया अन्य कोई मंच नहीं हो सकता। इसलिए संसद प्रत्येक प्रकार के विपक्षों को हल करने के क्षेत्र में महान भूमिका निभाती है। 13. महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति तैयार करना टू बिल्ड कंसेंसस ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज। डॉ A.S. नारंग का विचार है कि संसद कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति तैयार करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। उनका विचार है कि राष्ट्रीय एकीकरण, सांप्रदायिक एकरूपता और विदेश नीति आदि के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों की समस्याएं देश की एकता और अखंडता के लिए काफी गंभीर हैं, जिनका समाधान संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति तैयार करके किया जा सकता है। इसी तरह भारत की विदेश नीति, परमाणु नीति और CTBT पर हस्ताक्षर करने से संबंधित मुद्दों पर भी संसद में आम सहमति तैयार की जा सकती है, जो राष्ट्र के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। संसद की भूमिका के संबंध में ऊपर लिखित विचारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि संसद ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। हम यह भी जानते हैं कि संसद का वास्तविक कार्य राज्य प्रबंध चलाना नहीं, अपितु यह देखना होता है कि राज्य प्रबंध भली भांति चल रहा है या नहीं। राज्य प्रबंध चलाना मंत्री परिषद का कार्य होता है। संसद को हम सार्वजनिक हितों तथा राज्य प्रबंध की संरक्षक, गार्डियन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, तथा इस क्षेत्र में संसद ने अपने उत्तरदायित्वों को ठीक निभाया है। संसद की भूमिका के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए लोकसभा के सचिव जनरल डॉ सुभाष सी कश्यप ने कहा है कि संसद आजकल केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, यह एक ऐसी बहुकार्यात्मक संस्था बन गई है जो कि अनेकों प्रकार की भूमिकाएं निभाती है। उनमें से अधिकांश भूमिकाएं निरंतर संबंधित होती हैं तथा प्रायः एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। पार्लियामेंट टुडे इज नॉट ए लॉ मेकिंग बॉडी ओनली, इट हैज बिकम मोर एंड मोर ए मल्टी फंक्शनल इंस्टीट्यूशन परफॉर्मिंग ए वैरायटी ऑफ रोल्स, मैनी ऑफ दीज इंटर रिलेटेड एंड ऑफन मिशिंग इन टू वन एनदर, डॉ सुभाष सी कश्यप।